ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, महानता की निशानी सहनशीलता। बाबा हमें आकर के महान तो बना रहे हैं, बहुत सारे गुण हैं महान बनने के लिए, लेकिन बहुत ही मुख्यतः जो गुण है या शक्ति है वो है सहनशीलता। बाबा के बच्चों को तो पता है ये शक्ति है, ये गुण है, लेकिन समझ होते हुए भी कई बार हम सहन नहीं कर पाते हैं, या फिर यूं कहें सहन करना नहीं चाहते हैं, या कई बार सहन करते करते ये भी कह लेते हैं कि कब तक, क्या मुझे ही सहन करना है। बहुत सारे मुरलियों में बाबा ने इस शक्ति और गुण, क्योंकि सहनशीलता तो शक्ति भी है और गुण भी है, है ना, इसके बारे में बहुत बार अव्यक्त मुरलियों में जिक्र किया है, इसका वर्णन किया है, और कैसे हम सहन कर सकते हैं इसका भी विस्तार रूप में बताए हैं। आज थोड़ा स्पष्ट रूप से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब गाड़ी, चाहे वो फोर व्हीलर्स कार, जब बहुत ही स्पीड जाना हो, हाईवे है, रास्ता खुला है, कोई भी अड़चन नहीं है, वन वे है, माना उस तरफ से गाड़ी वो जो है वन वे है, तो पूरा खुला है रास्ता, तो गाड़ी को अगर भगाना है तो कौन से पार्ट के कारण से, गाड़ी के कौन से पार्ट के कारण से वो 120-130 तक गाड़ी को भगा सकते हैं, किसके कारण से? एक्सीलरेटर और एक्सीलरेटर, गियर और इंजन पावर। ऑफ कोर्स इंजन पावर कम है तो ज्यादा कितना भी एक्सीलरेटर दबाए तो नहीं भागेगी गाड़ी। पेट्रोल, हाँ वो होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल, उसमें फ्यूल होना चाहिए, है ना, हाँ, और उसके कारण से नहीं, हाँ वो जरूरी है ना, और ड्राइवर के कारण से, है ना, और ड्राइवर और बहुत स्किल्ड है वो भगा सकता है, अगर नया नया अभी सीख रहा है तो वो नहीं, वो डरता है, डरेगा वो गाड़ी को भगाने के लिए। टायर्स, हाँ पावरफुल टायर्स होना चाहिए, उसके कारण से गाड़ी को भगा सकते हैं, और हाँ टायर में हवा होगी ना हवा के बिना वो तो फ्लैट टायर के साथ तो कैसे हो, यहां से वहां तक भी नहीं जाएगा, है ना, और क्या चाहिए, और भी कुछ चाहिए, ब्रेक, क्यों, कंट्रोल होनी चाहिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, थोड़ा दूर दो, ब्रेक अच्छा हो तो फास्ट चला पाएंगे, क्यों, कॉन्फिडेंस है कि मेरा ब्रेक पावरफुल है, अगर ब्रेक फेल हो गया तो, हाँ अगर पता चले कि मेरा ब्रेक ठीक काम नहीं कर रहा है तो डर डर के, वो क्या 20 या 30 में ही चलाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डर डर के क्यों कहीं ठोक ना जाए, है ना, तो ये जो गाड़ी फास्ट भगा सकता है तो ब्रेक के कारण से, इंजन है वो सब कुछ है, है तो सही ठीक है, लेकिन ब्रेक ठीक नहीं है तो फिर नहीं भगा सकते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस है कि जब चाहे तब मैं ब्रेक लगा सकता हूं, तो वहां ब्रेक लग जाएगा। जितना पावरफुल ब्रेक है उतना बड़ा कॉन्फिडेंस ड्राइवर के पास होगा। तो हमें भी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, बहुत कुछ कोशिश करते हैं ना, आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, और फिर लौकिक दुनिया में तो प्रोफेशनल लाइफ हमारा बहुत अच्छा चले, बहुत जल्दी तरक्की पाए, मतलब हर तरीके से बहुत जल्दी कमाना है, बहुत सारी बातें हैं। तो उसके लिए हमारा ब्रेक है, पुरुषार्थ के लिए भी हमारा ब्रेक है सहनशीलता। अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं हैं। एक्सीडेंट कौन सा, किस प्रकार के एक्सीडेंट्स होता है हमारी जिंदगी में, संबंधों में टकराव हो जाता है, टकराव होने के कारण से फिर कहीं ना कहीं मन ठीक नहीं रहता है, फिर हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, योग नहीं लगता है, तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए हमें अपना ब्रेक पावरफुल करने की जरूरत है। इसको पावरफुल कैसे बनाए, इसको पावरफुल कैसे बनाए, सबसे पहली बात है सहनशीलता क्या है उसको समझने की जरूरत है। सहनशीलता क्या है, क्योंकि बहुत सहन कर रहे हैं, चुप रहते हैं, लेकिन चुप रहने कितने बार चुप रहेंगे, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन 16वें बार बोल पड़ते हैं कि आखिर कब तक, है ना। तो और सिर्फ ये नहीं बोलते आखिर कब तक, लेकिन पूरा जो बड़ास अंदर जमा हुआ होता है ना, इतने दिनों का, इतने महीनों का जो फ्रस्ट्रेशन है अंदर जो भरा हुआ है, वो सारा कुछ एक व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं, है ना, उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, है ना। तो वो छोटा जो छोटी गलती जो उसने किया है उसके कारण से हम मेहरबान नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि इतने महीनों से जो उस व्यक्ति के कारण से नहीं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा था मन के अंदर, वो बातें फ्रस्ट्रेशन के रूप में था, तो वो फिर जमा होके 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 और किसके ऊपर हम बरस पड़ते हैं, इनको लगता है कि बहुत थोड़ा मेरे से थोड़ा वीक है, मेरे से थोड़ा सा जूनियर है, मेरे से थोड़ा ठीक है, सुन लेंगे मेरी बात, तो उनके ऊपर हम बरस पड़ते, घर में अपने परिवार के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर हम बरस पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो अपने है ना, तो चल जाएगा, ये तो सहन कर लेंगे, ये तो चल जाएगा, लेकिन यही बात बार 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 चलता रहे तो फिर वहां वातावरण, घर का वातावरण कैसा रहेगा, नहीं ना। तो इसीलिए सहनशीलता माना, बाहर सभी चुप लेकिन मन के अंदर भी शीतलता। कोई भी व्यर्थ संकल्प या नकारात्मक संकल्प न चले, अंदर भी से भी शांत शीतल और बाहर से भी शांत और शीतल, इसको सहनशीलता कहते हैं। और कितने, और नेचुरल जब हो जाता है ना, नेचुरल जब हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि सहन कर रहे हैं, ये तो ठीक है हो रहा है, क्योंकि मन में रजिस्टर भी नहीं हो रहा है मैं कोई सहन कर रही हूं। अगर बाहर से चुप है लेकिन मन में चल रहा है कितना कुछ करना पड़ रहा है, कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है, ये ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको झेलना पड़ रहा है, तो ये बातें जब संकल्प में ये बातें आएगी तो फिर वो प्रेशर बन जाता है ना। मम्मा कहते थे ना, मम्मा के पास जाकर के अगर कोई कहे कि मम्मा कब तक सहन करे, मम्मा क्या कहते थे पता है? तुम प्रेशर कुकर हो, मम्मा पूछते थे तुम प्रेशर कुकर हो, तो प्रेशर कुकर क्या करता है, अगर वाल्व सील्ड है, ऊपर से वाल्व खुला नहीं है, वो अटक गया है और प्रेशर बढ़ गया है प्रेशर कुकर के अंदर, तो ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो क्या होगा, वो फट जाएगा, है ना, ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम भी प्रेशर अगर यहां बढ़ जाता है तो हम भी ब्लास्ट कर लेते हैं मुख के द्वारा, जो बाहर प्रेशर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको सहनशीलता नहीं कहेंगे, इसको सप्रेशन कहते हैं, इसको दबाना कहते हैं। सप्रेस करेंगे तो कभी ना कभी वो प्रेशर बाहर जरूर आएगा, लेकिन प्रेशर क्रिएट ही ना हो अंदर, ठंडा है, प्रेशर ही क्रिएट ना हो, तो फिर वो ब्लास्ट होने की संभावना ही नहीं है, है ना। तो इसलिए ऐसे सहनशीलता को अपने अंदर धारण करने की जरूरत है। जो सहन करता है वही महान बन सकता है। इतिहास को देखें, चाहे यज्ञ में चाहे लौकिक दुनिया में, जो भी आत्माएं महान बने किस कारण से बना, हाँ उनका कार्य महान था लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर सहन शक्ति जबरदस्त थी, सहन करना पड़ा उनको बहुत कुछ, तब जाकर के वो महान बने। अच्छा करना चाहते हैं लेकिन समाज में जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहे तो सुनना तो पड़ेगा ना, तो अगर सुनेंगे तो अगर वहां सहन शक्ति नहीं है वहां ही छोड़ करके चले जाएं, वहां ही हम काम करना छोड़ दे, अपनी सेवा को छोड़ दे, तो ये कायरता हो गई ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, बड़ा बनना माना बड़ा दुख पाना। अगर बड़ा बनना है, महान बनना है, बड़ा माना कोई वो नहीं, महान अगर बनना है तो सहन करना सीखना होगा। चाहे लौकिक दुनिया में देखते हैं महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, जो भी अच्छा काम करना शुरू किया तो लोगों का के ताने बहुत सुनने को मिला, और ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा जो सहन किया वो ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। प्रैक्टिकली जो उनका जीवन था लौकिक दुनिया, बाबा आने से पहले, शिव बाबा के अवतरण के पहले ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज थे, उनका जो नाम था समाज में बहुत अच्छा था, और किसी ने भी दो लफ्ज भी ऐसे गाली नहीं दी होगी, बहुत सम्मान बहुत रेस्पेक्ट था समाज में दादा लेखराज को। लेकिन जैसे ही शिव बाबा का अवतरण हुआ ब्रह्मा के तन में बहुत कुछ सुनने को मिला, है ना, बहुत कुछ। यहां तक भी लोग जब वो सुबह सुबह टट्टी करते हैं ना, वो उठा करके बाबा के ऊपर फेंकते थे, इतना तक बाबा ने सहन किया। लेकिन इतना कुछ हो रहा है तो फिर बाबा अगर सोचते कौन से मुसीबत है, छोड़ देते हैं इसको, इतना मान सम्मान था समाज में, कौन से मुसीबत आ गई तो मैं तो ये नहीं करूंगा, छोड़ देते उस टाइम पे तो क्या होता, आज इतना बड़ा यज्ञ नहीं बनता था, है ना, इतना कुछ विश्व परिवर्तन के लिए जो कार्य चल रहा है वो नहीं हो सकता था, है ना। तो इसीलिए अगर जब भी ऐसी बातें आई ना तो फिर क्या याद रखना है, ब्रह्मा बाबा को। और दादियां भी, एक एक दादी की कहानी जब हम सुनते हैं तो एक एक दादी ने बहुत कुछ सहन करना पड़ा उनको, और नेचुरल क्योंकि सबको साथ लेकर के चलना था ना उनको, तो इसीलिए सहन करना एक प्रकार से नेचुरल हो गया था। हम प्रकाशमणि दादी की बात अगर देखते हैं, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो कोई किसी ने भी नहीं सोचा था कि ब्रह्मा बाबा हमको छोड़ के चले जाएंगे। बाबा हमेशा कहते थे कि साथ साथ अंतिम समय तक साथ साथ चलेंगे। कभी कोई भी दादियां या फिर जो भी भाई बहने उस समय थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाबा एक दिन शरीर छोड़ देंगे। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जो 300 जो 350 लोग दादियां थे, तो उनमें से एक दादी को उठा करके संस्था के चीफ के जगह पर बिठाया, तो ये जो 300 दादियां थी तो उनको कैसा लगा होगा? कल तक जो हमारे साथ थे, हमारे जैसे थे दादी, हमारे में से एक थे दादी, आज संस्था की चीफ जो ब्रह्मा बाबा की जगह पर बिठाया गया है, तो लेकिन दादियां थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बाबा का फरमान था, बाबा ने कहा ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसको भी एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगा होगा ना, तुरंत ऐसे एक दिन में तो एक्सेप्ट करना इजी नहीं था। बड़ी दीदी को भी इजी नहीं था और दादी को भी इजी नहीं था कि दादियां जो दादियों बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी से भी जो बड़े थे, तो उनको ना देख करके प्रकाशमणि दादी को उस जगह पर बिठाया। प्रकाशमणि दादी को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा ना। तो एक एक कहानी जब हम सुनते हैं तो बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है सहन करने की, है ना। उनके सामने हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दादियां, मेजॉरिटी दादियां जो भी थे करोड़पति के घर के थे, लौकिक दुनिया में उनके घरों में नौकर चाकर, उनको किचन में कहां कैसे खाना बनाना होता है तो वो भी पता नहीं था। जो ब्रिजेंद्र दादी की कहानी सुनते हैं तो उनका भाई बाबा को बोला था कि मेरे जो बहन है वो किचन में काम नहीं करेगी, हमने अपनी बहन को बहुत अच्छा उनको परवरिश दी, वो किचन में काम नहीं करेगी। बाबा ने हाँ ठीक है। तो माना इतने जैसे अमीर घर के, लेकिन जब यहाँ माउंट आबू में जब आए तब तो बेगरी पार था। ठीक है, जब तक कराची में थे थोड़ा बहुत फिर भी ठीक था, लेकिन जब यहां आए बेगरी पार्ट जब शुरू किया तो सब कुछ करना पड़ा। कहां रेशम की साड़ियां जो पहनते थे और कहां सूत की जो कॉटन साड़ियां पहनने लगे थे दादियां, और कितना कुछ सहन करना पड़ा था। उसी टाइम पे जब निश्चय नहीं, जिनको निश्चय नहीं था वो छोड़ के चले गए, जिनको निश्चय मजबूत था वो रह गए ना। तो ये हमारे लिए भी एक सीढ़ी है, एक सीख है। तो ऐसे सहन अगर नेचुरल अगर करना है तो क्या कौन सी बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि शक्तियों में से सामना करना भी एक शक्ति है, सहन करना भी एक शक्ति है। हमें ये भी समझना जरूरी है सहन कब करना है और सामना कब करना है। सामना करने की जगह सहन कर लिया, सहन करने की जगह सामना कर लिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। जो अष्ट शक्तियां बाबा ने दिया है हमें, वो हमारे लिए अस्त्र शस्त्र है। कर्म क्षेत्र पर इन शस्त्रों को यूज करते हैं। सहन करने की जगह सामना किया, सामना करने की जगह सहन किया, तो गलत शस्त्र का प्रयोग हो गया तो वहां हार निश्चित है। तो इसीलिए कहां सहन करना है, कहां सामना करना है, कहां परिस्थितियों को सामना करना है और किसको सहन करना है, किसको सहन करना है, लोगों को सहन करना है। इसीलिए कहते हैं ना, पाप से नफरत हो पापी से नहीं। जो गलत कर रहा है हाँ ठीक है, सामना तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट तो बनना पड़ेगा, थोड़ा आंख तो दिखाना पड़ेगा कभी कभी, लेकिन उससे नफरत नहीं। जो कर रहा है आत्मा के प्रति हमारे नफरत की भावना नहीं है, उसको सहन करने की जरूरत है ना। तो कहीं सारे कार्य जैसे बाबा भी सहन किया, तो उस समय परिस्थिति को सामना किया। परिस्थिति को अगर सहन करते तो क्या होता कि ये छोड़ के चले जाते। परिस्थिति को सामना किया लेकिन लोगों को सहन किया, क्योंकि इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना था। तो इसलिए कभी भी सेवा के क्षेत्र पर, कारोबार में कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आता है तो समस्या का तो समाधान करना होगा, सामना करना होगा, लेकिन समस्या को जो क्रिएट कर रहा है उस व्यक्ति को सहन करने की जरूरत है। वो कैसे? कुछ साल पहले मैं ना अफ्रीका गई थी, नैरोबी गई थी, तो उस वहां एक रिमांड होम में गए थे। रिमांड होम बच्चों का जेल, जुविनियल होम जो होता है, बच्चों का जेल था। तो वो जो वार्डन, वो जो जेल का जो वार्डन थी वो बीके थी बहन, तो वो लेके गए वहां कैसे चल रहा है दिखाने के लिए। उस जेल के तीन भाग थे। एक भाग में बच्चे जो 6 मास 7 मास ऐसे जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जिनको जो क्लेम नहीं किया है माँ बाप ने, या कि कूड़े के डब्बे में जो मिले हैं, ऐसे रास्ते में मिले हैं, ऐसे बच्चों को रखा था। और सेकंड सेक्शन में थोड़े बहुत जो बड़े हैं, 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों, तो वो थे जो छोटे मोटे चोरियां की थी, उनको रखा था। और तीसरे सेक्शन में 12 से 18 साल के बीच के जो बच्चे थे, जो टीनेजर्स थे, उनको रखा था, जिन्होंने खून किया था, चोरी की थी, ऐसा रखा था। तो जो बड़े बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ लड़कियां भी थी, तो उनके बारे में पूछा, ये लड़कियां क्यों यहाँ हैं? तो उन्होंने, एक लड़की थी ऐसे बहुत इनोसेंट दिख रही थी, गरीब घराने के थे, तो फिर वो नौकरी कर रही थी किसी के घर में, बेबी सिटिंग कर रही थी। तो उसको अपनी मालकिन के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने बच्चे को सिर मरोड़ करके उसने मार दी, तो फिर अभी जेल में है। और दूसरी जो लड़की थी उसको भी ऐसे थी, वो भी बेबी सिटिंग कर रही थी, उसको भी गुस्सा आया था अपनी मालकिन के ऊपर, तो उसने बच्चे को रेफ्रिजरेटर में डाल करके मार दिया था। तो ये लोग जब आते हैं, बच्चे जब आते हैं जेल के अंदर, उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही वायलेंट होता है। क्यों वायलेंट होता है? क्योंकि उनका परवरिश ऐसा है, क्योंकि घर में उनके जो माँ बाप हैं, इधर एक पेरेंट है, माँ है या पिता है, या फिर माँ बाप है, तो उनका घर का माहौल इतना अच्छा है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, तो उनके बच्चों को परवरिश इतना अच्छा न मिलने के कारण से उनका संस्कार ऐसा हो गया है, तो समाज के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत वायलेंट है। घर यहाँ आते हैं तो वो व्यवहार, उनका बिहेवियर भी ऐसा होता है। तो जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी यहाँ काउंसलर्स होते हैं, उनको सहन करना पड़ता है। बच्चे जो आते हैं, गालियां देते हैं, वायलेंट होते हैं, सहन करते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, क्योंकि वो बच्चे ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको प्यार नहीं मिला हुआ है ना। तो इतना प्यार देते हैं, स्टार्टिंग में तो मुश्किल है, उनको सहन करना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 इतना प्यार दे करके काउंसलिंग करके वो इतने परिवर्तन हो जाते हैं। 3 साल में वो परिवर्तन हो करके बाहर जब निकलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आर्मी ऑफिसर्स है, तो समाज में बहुत अच्छे पोजिशन में है, वो वापस आकर के फिर कभी कभी साल में 15 दिन सेवा देते हैं वहां बच्चों के बीच में। तो जो थे वो सिचुएशन तो है, तो उसको तो सामना तो करना है, लेकिन सामना उन्होंने कैसे किया? वैल्यूज को अपना करके, सहन करके, प्यार दे करके सिचुएशन को, परिस्थिति को सामना किया। इसलिए मूल्यों को अपना करके, मूल्यों को आधार बना करके परिस्थिति का सामना जब हम करते हैं, तो वो फिर उसमें हम सफलता पा सकते हैं। तो सहन करने के लिए जो सबसे पहली जो चीज, गुण जो चाहिए या शक्ति जो चाहिए, वो है प्यार, है ना। जहां स्नेह है वहां सहन करना सहज हो जाता है, वह को थोड़ा भी अपनापन नहीं है तो वहां हमको लगता है बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है। स्नेह को बढ़ाने की जरूरत है, आत्मिक स्नेह। जहाँ आत्मिक स्नेह है, रूहानी स्नेह है, वहाँ शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो इसीलिए स्नेह, वो जो बाबा के प्रति, जब दोनों बातें होती है, एक है जो व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके प्रति आत्मिक स्नेह, आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्मिक स्मृति से देखना, और दूसरा है बाबा के प्रति प्यार। जब बाबा के प्रति इतना अटूट प्यार होता है ना, ये सारी जो समस्या है ना, ये जो भी बातें हैं, वो छोटे छोटे नजर आने लगते हैं। बाबा के प्यार में इतने मग्न होने के कारण से वो हीलिंग पावर, प्यार जो है वो हीलिंग का काम करता है। आत्मा अगर भरपूर है तो फिर वो कुशन का काम करता है। जैसे गाड़ियों में भी एक तो ब्रेक की जरूरत है, दूसरा है शॉक अब्सॉर्बर, है ना। गाड़ियों में शॉक अब्सॉर्बर पावरफुल है तो गाड़ी स्मूथ चलती है ना। अगर शॉक अब्सॉर्बर पावरफुल नहीं है तो थोड़ा भी खड्डा आया, उछलना बहुत ज्यादा हो जाता है, है ना। हमारे लिए सहनशीलता एक प्रकार के शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है, जिंदगी की गाड़ी को बहुत स्मूथली लेके जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात है स्नेह की शक्ति, बाबा के प्रति प्यार। जो अनुभूति हम करते हैं, प्यार की अनुभूति करते हैं, और वही प्यार फिर झलकता है दूसरों के प्रति, वो बहता है, तो फिर वहां सहन करना बहुत मुश्किल नहीं लगता है। एक बार दादी कहीं से आ रहे थे, तो वो बॉम्बे से मुझे लगता है पार्टी लेके आ रहे थे प्रकाशमणि दादी, तो उसमें छोटे बच्चे भी थे, तो वो उन दिनों में थोड़ा सा सीट्स का प्रॉब्लम था, तो एक बच्चे के लिए सीट नहीं था। तो दादी ने क्या किया कि बच्चे को, वो बच्ची थी तो उसको सुला दिया, रात को अपने बर्थ को त्याग करके बच्ची को सुलाया, और दादी रात भर बैठे रहे। प्यार, जहां प्यार है ना। और ये बच्ची कौन थी पता है, जो सैन फ्रांसिस्को के चंद्रबेन, तो अपने अनुभव में बताते हैं कि रात भर दादी बैठे रहे, और सुबह जब उसने आंख खोला, चंद्रबेन ने आंख खोला कि दादी बहुत प्यार से, अच्छा अच्छी नींद आई, तो बहुत प्यार से, ये माना मजबूरी से नहीं लेकिन प्यार से त्याग किया, है ना। तो वहां फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं है, अरे इसको सुलाना पड़ रहा है तो ये वो है, नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं है ना। तो स्नेह की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है, जितना शांति की शक्ति और शीतलता है, धैर्यता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी धैर्यता नहीं है, पेशेंस अगर नहीं है, फट से बोलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा धीरज, वो व्यक्ति क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो थोड़ा सा समझ करके फिर रेस्पॉन्ड करें ना। समझे बिना हम तुरंत रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, वहां थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, थोड़ा भी धीरज नहीं है, थोड़ा भी शांति नहीं है। आजकल बहुत फास्ट फास्ट है ना, समझे बिना हम करने की कोशिश करते हैं, रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बाबा के यज्ञ में भी कहते हैं, सबसे पहले जो गुण है आत्मा का वो है शांति, है ना। शांति की कमी के कारण से दूसरे सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। शांति जहां है वहां धीरज भी आ जाता है, इसलिए धीरज बहुत बड़ी शक्ति है। थोड़ा सा धीरज धरो ना, तो जब धीरज धरेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं, तो समस्या का समाधान हम ला सकते हैं। और तीसरी बात है रहम दिल। जब रहम दिल होंगे तब क्षमाशील हो सकते हैं, फॉरगिव हम कर सकते। गलतियां तो हर एक से होता है, गलतियों को ही पकड़ करके हम कहें कि तो क्षमा करना भी सीखना होगा ना। क्षमा करेंगे तभी हम भूल पाएंगे, इसलिए दोनों शब्द एक साथ साथ जाता है, फॉरगिव ओनली देन यू कैन फॉरगेट, है ना, जब तक फोगीव नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तब तक भूल नहीं पाएंगे। जब भूलेंगे नहीं तो फिर बचपन से लेकर के जो नेगेटिव मेमोरीज है, दुर्घटनाएं जो घटी है, तो सारी बातें याद रखते हैं, क्योंकि हमने क्षमा नहीं किया है। क्षमा करेंगे तो दूसरों पर मेहरबान नहीं हो रहे हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, खुद पर हम मेहरबानी कर रहे हैं। तो इसीलिए क्षमा करना सीखे। और क्षमा कैसे करेंगे, क्षमा कैसे करेंगे, हाँ, केवल ये कहने से पर्याप्त है क्या कि हाँ ठीक है क्षमा कर लिया आपको, माफ कर दिया? नहीं, अंदर से दुआ देने की जरूरत है। दुआ किसको देते हैं हम, ब्लेसिंग्स किसको देते हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिनसे हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, उनको हम आशीर्वाद देते हैं, हम दुआ देते हैं। लेकिन जिन्होंने परेशान किया है आपको, जिन्होंने दुख दिया है, उनको भी हम दुआ दे सकते हैं। इसने कुछ गाली दे दी, उसने कुछ कह दिया, उसने हमारे मेरे बारे में किसी को जाकर के गलत फहमी फैलाई है, गलत बातें फैला दिया है, तो उसके प्रति भी क्या हम दुआ दे सकते हैं? दुआ से दे सकते हैं। डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो आत्मा ऐसे क्यों कर रही है, गलत जो ये है क्यों फैला रहा है? मैंने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 10 लोगों के बीच में जाकर के कुछ ऐसे गलत फैला रहे हैं, तो उसके प्रति दुआ कैसे, क्यों कर रहे हैं? ऐसा कोई ईर्ष्या होगी, या कुछ मेरे से संतुष्ट नहीं होंगे, या कुछ मैंने कुछ किया होगा, है ना? तो अगर खुद को चेक करने की जरूरत, अगर मैंने किया है तो ठीक है, चेक करना है, अगर किया ही नहीं है ऐसा, तो फिर उसको समझने की जरूरत है, शायद वो ईर्ष्या है, तो उसके प्रति हमें रहम दिल होने की जरूरत है, कंपैशन। तो रहम दिल हो करके उसको और ही बाबा से सकाश लेकर के देने की जरूरत है, क्योंकि वो आत्मा बीमार है, वो आत्मा कमजोर है, क्योंकि उसको पता नहीं है वो क्या कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति है ना, वो कर्म कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। अगर वो कर्म आज कर रहा है, वो कभी ना कभी जाकर के उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उसके प्रति रहम दिल होने की जरूरत है। और ही दुआ दे, बाबा उसको सद्बुद्धि दे, खुश रहे, ये मैंने दुआ दे और फॉरगिव करे, क्षमा करे। और चौथी बात जो सहन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मनन चिंतन। एक मुरली में बाबा ने ये स्पष्ट कहा है, 71 की मुरली आप खोल करके देखना, 71 की जून की मुरली में 2-3 मुरलियां हैं, तो 2-3 मुरलियों में बाबा ने सहन शक्ति के बारे में बताई है, एक मुरली में बाबा ने मनन चिंतन के बारे में कहा है। मनन जब करते हैं, मन को मनन की जरूरत है, और जब हम मनन में इतना मग्न रहेंगे, मन को इतना मग्न रखेंगे, तो फिर वाचा और कर्मणा में सहन करना सहज हो जाता है ना? अगर मनन करते ही नहीं है, मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन चल नहीं रहा है, तो क्या होगा? कोई भी समस्या आती है, या कुछ ऐसे घटना घटती है, या फॉर एग्जाम्पल कोई गलत फहमी मेरे बारे में फैला रहे हैं, तो मनन चिंतन नहीं चल रहा, श्रेष्ठ चिंतन नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? उन्हीं बातों का चिंतन चलना शुरू होगा, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसी उन्हीं बातों का उलझन में लगे रहेंगे, तो फिर हमारा वेस्ट थॉट्स चलता है, व्यर्थ चिंतन चलता है। तो मनन चिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में मन मग्न है, तो फिर इन बातों से हम न्यारा रह सकते हैं, हम अपने श्रेष्ठ कर्म करते रह सकते हैं। तो इसलिए मनन करना बहुत जरूरी है। मनन करने से क्या होगा? मनन करने से ज्ञान की गहराई की समझ आने लगती है और ज्ञान की गहराई जब समझ में आने लगती है गंभीरता आती है। गहराई जब आती है तो गंभीरता, मैच्योरिटी, हर चीज की समझ आने लगती है, ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। केवल हम ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं देख रहे हैं, परिस्थितियों को ऊपर से माप नहीं कर रहे हैं, माप नहीं ले रहे हैं, लेकिन गहराई, ज्ञान की गहराई। जब गंभीरता है तो गहराई है, तो बाबा ने ये बात शब्द यूज किया है, जहां गंभीरता है वहां घबराहट नहीं है। घबराहट क्यों होता है, तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, अरे बाप रे उसने ऐसा जाकर के बोल दिया, बड़ों को जाकर के ऐसा कह दिया, ये क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है ना, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, खुद में विश्वास है, गंभीरता है, वहां समझ है, ज्ञान की गहराई है, वहां घबराहट नहीं है, है ना। तो इसीलिए ज्ञान की गहराई में जाने की जरूरत है, मनन चिंतन की जरूरत है, तब हमारे अंदर गंभीरता आएगी। और पांचवी बात है निश्चय बुद्धि। जहां निश्चय है, किन किन चीजों में निश्चय, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। परिवार में निश्चय जब है ना, तो फिर सहन करना इजी हो जाएगा। परिवार कौन सा है, बाबा का परिवार है, सतयुगी परिवार है, यही आत्माएं भविष्य में देवी देवताएं बनने वाली है, निश्चय। और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद में, खुद के कर्मों में निश्चय। इतना श्रेष्ठ कर्म करते चले, इतना श्रेष्ठ कर्म करते चले, अगर कुछ भी समस्या आए तो मुझे विश्वास है मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं। एक बार मीडिया वाले दादी जानकी से इंटरव्यू कर रहे थे, उन दिनों में है ना बहुत कुछ समाज में बहुत ऐसे गलत काम चल रहे हो रहे थे, जैसे रेप हो रहा था, ये हो रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी। तो दादी को बहुत सारे प्रश्न पूछे उन्होंने, लेकिन एक प्रश्न जो उन्होंने पूछा तो मेरे साथ मतलब बहुत याद रह गया मेरे साथ। तो उनको पूछा, दादी अगर आपके साथ ऐसा घटना घटती तो आप क्या करते, किसी ने भी आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया होगा, गलत व्यवहार करते हैं तो आप क्या करते। तो दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप क्या, अगर आपको वो प्रश्न पूछते तो आप क्या कहते, क्योंकि समाज के लॉ है कि अगर आपने प्रोटेक्शन के लिए किसी को मर्डर भी किया तो वो गलत नहीं है, राइट। तो दादी ने क्या कहा कि मुझे अपने कर्मों पर इतना विश्वास है कि मुझे, मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी नहीं। माना अपने कर्मों पर इतना विश्वास, मैंने गलत कर्म किया ही नहीं ना इस जन्म, पिछले जन्मों का पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो इतना श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इतना इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करे तो ताकि फिर खुद पर डाउट ना आए, या भविष्य पर बहुत डाउट ना आए, या डर ना आए कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है ना, कि बाबा इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान लेकर के अपने कर्मों को पल पल हर पग पर अपना कर्म इतना श्रेष्ठ करते जाएं तो डर के नाम निशान भी ना रहे, ऐसा कर्म निश्चय हमारे अंदर, अपने पर, बाबा के ज्ञान पर, ड्रामा पर निश्चय होना बहुत जरूरी है। और सिक्स्थ बात, छठी चीज है त्याग की भावना। बाबा ने एक मुरली में कहा है, सर्वंश त्यागी ही सहन कर सकता है। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं ना, अगर कोई ग्लानी भी कर रहा है तो उसका भी मान नाम मान शान सबसे निंदा स्तुति मान शान सबसे ऊपर, सब में एक रस है ना। स्तुति जब कर रहे हैं स्थिति अच्छी है, हमारी स्थिति स्तुति के आधार पर है। कोई वाह-वाह कर रहे हैं तो उसके आधार पर मेरी स्थिति अच्छी है, लेकिन कोई ग्लानी कर रहा है तो मेरी स्थिति डाउन हो जाए तो वो योगी नहीं कहलाएंगे। योगी माना निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान। एक समान कैसे रहे हम? हम तो इंसान हैं, भावनाएं तो है, ऊपर नीचे तो होगा। अगर कोई ऐसे दुर्घटना, किसी के मृत्यु हो गया या किसी का ऐसे दुर्घटना घटी तो दुख तो होगा, और अच्छा कुछ अच्छा हो गया तो खुश तो होंगे, है ना। तो परिस्थिति के आधार से खुश या फिर दुखी तो होंगे ही, लेकिन ये अर्थ क्या है इसका? निंदा स्तुति मान अपमान में एक रस योगी की निशानी है। हमारे अंदर भावना एकदम फ्लैट तो नहीं रहना है ना। खुशी में तो खुश होना है, दुखी में थोड़ा बहुत दुखी होंगे तो चलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं रोना नहीं है, है ना। थोड़ा मायूस होगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ऊपर नीचे जो हम साइन ये देखते हैं ना, वेव्स, जो हार्ट बीट, जो ECG होता है, EG होता है, तो ऊपर नीचे चलता है ना, तो साइनोसोइडल वेव्स होता है, तो वे जीरो होता है। जब मर जाता है व्यक्ति जीरो हो जाता है, उसके अंदर कोई भी भावनाएं नहीं। जब जिंदा है तभी तो भावनाएं हैं, ऊपर नीचे चलता है। लेकिन निंदा स्तुति मान अपमान में एक रस माना एकदम जीरो नहीं, किसको देख करके स्माइल भी ना करे, एकदम फ्लैट फेस हो, ऐसे अच्छा लगेगा, एकदम फ्लैट, कोई भावना नहीं है, उसको देख करके अच्छा लगेगा। लेकिन देवी देवताओं का चेहरा कैसा है? हमेशा स्माइलिंग, हसमुख, है ना, मुस्कुराता हुआ। तो ऐसा तो रहना है, लेकिन ऊपर नीचे ना हो माना इसका मतलब है कि अगर कोई अच्छा हो तो बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है, अच्छा हुआ खुश है ना, बहुत एक्साइटेड नहीं। जब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना तो क्या होगा, थोड़ा भी दुख आया तो वो वेव जो है ना बहुत नीचे चला जाएगा। थोड़े से सुख में बहुत एक्साइटेड हो जाना, थोड़े से दुख में बहुत ही दुखी हो जाना, ये रॉन्ग है। थोड़ा दुखी होना ठीक है चलेगा, लेकिन वो लंबा समय तक नहीं, थोड़ा बहुत हो गए, थोड़ा सा हम सद्भाव ये भी रखना है ना, अपने अंदर जो भावनाएं भी तो रखने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं ना कभी कभी आजकल ना दो लोगों के अंदर भावना ही नहीं है एक दूसरे के प्रति, ऐसा भी नहीं होना है। अगर कोई तकलीफ से गुजर रहा है उसको प्रति हम कुछ मदद ही नहीं कर रहे, कुछ भावना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना है, है ना। तो ये एक रस स्थिति तभी होगा जब हमारे अंदर वो सहनशीलता की शक्ति इतना जबरदस्त होगा। और त्याग, त्याग का भी त्याग हम करते हैं, जो भी अगर हमारी वाहवाह भी कर रहे हैं, हम बहुत ही ऊंचा चढ़ा चने के जाड़ पर भी चढ़ा रहे हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक रस स्थिति, त्याग का भी त्याग जब हम करते हैं तो सहन करना बहुत सहज हो जाता है। और सातवीं और अंतिम बात है, हमारा लक्ष्य जब ऊंचा है, छोटी छोटी बातों के बारे में हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे एथलेट्स, आजकल ओलंपिक्स चल रहा है ना, जो एथलेट्स जो होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तकलीफों से गुजरते, बहुत दर्द होता है, वो आधे रास्ते में छोड़ते नहीं है। क्यों? उनका लक्ष्य होता है कि मुझे मेडल ले आना है, मुझे तो इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं, इतने तकलीफ इतना सहन करते हैं, चाहे वो शारीरिक तकलीफें हैं या फिर फाइनेंस, जो भी तकलीफ है उसको सहन करके, क्योंकि उनका लक्ष्य ऊंचा है। जब हमारा भी लक्ष्य ऊंचा है, हमारा लक्ष्य कौन सा है? फरिश्ता बनना, भविष्य में तो देवी देवता बनना वो तो ठीक है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए हमें फरिश्ता बनना है। जब लक्ष्य ऊंचा है तो सहन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्थिति ऊंची है तो छोटी छोटी चीजें हमको दिखाई नहीं देगी। बाबा कहते हैं ना, अपनी स्थिति इतना ऊंचा रख दे क्योंकि ऊंचाई से छोटी छोटी बहुत नीचे वाली चीजें बहुत छोटे छोटे नजर आने लगते हैं। और वो भी, और सेवा का भी लक्ष्य, अगर हमें ये लक्ष्य है कि सेवा करनी है तो सेवा करना है तो फिर सबको साथ ले जाने की जरूरत है, साथ ले जाना है तो संस्कारों का मिलन बहुत जरूरी है। संस्कारों का मिलन नहीं कर पाएंगे तो फिर महाराजा महारानी कैसे बनेंगे, है ना। तो सेवा का लक्ष्य भी अगर ऊंचा रखते हैं, मुझे याद है कुछ साल पहले शिवरात्रि के दिन चल रहे थे, फरवरी के दिन थे, तो कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था नेशनल लेवल में, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था यहाँ ज्ञान सरोवर में, हम 3-4 लोग बैठ करके कर रहे थे कुछ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उसमें से एक भाई जो थे बहुत ही मुश्किल था उनको सहन करना, बहुत फटक से बोल देना, बहुत ये मना ये करना, मतलब काफी लंबे काल से, मतलब कुछ 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, एक दिन बाबा के सामने बैठे, बाबा बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इस भाई के साथ काम करना, सेवा करना बहुत तकलीफ हो रही, मैं सोचती हूँ छोड़ दूँ ये सेवा, छोड़ दो वो ही वो लोग कर ले, छोड़ दो। तो उसी दिन फिर मुरली में बाबा ने कहा, एक स्लोगन में या वरदान में बाबा ने कहा कि मेरे खातिर सहन करो। तो माना बाबा की सेवा के कारण से, अगर फिर मुझे बाद में महसूस तो हुई अगर मैं छोड़ती सेवा करना शायद वो प्रोजेक्ट नहीं होता, वो सेवा का प्रोजेक्ट नहीं हो, अगर होता तो अनेकों को जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं होता, है ना। सेवा के कारण से कहीं बार हमें सहन करना पड़ता है क्योंकि लक्ष्य है ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, ये लोगों के तक पहुंचे ये बात। जब हायर जो हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है ये बात, फिर बाबा मदद भी करता है। बाबा ने जो कहा ना कि मेरे खातिर सहन कर लो, तो मैंने सोचा कि ठीक है बाबा आपके खातिर सहन कर लेते। तो बाबा जब आए शांतिवन में, डायमंड हॉल में जब बाबा आए तो इतना प्यार की अनुभूति हुई उस दिन, बाबा ने बहुत शक्ति और प्यार आत्मा के अंदर भरे। तो माना जो सहन करता है बाबा भी बहुत प्यार करता है, बाबा के दिल पर अगर चढ़ना है तो क्या करना होगा, झुक झुक मर मर सिक सिक, ये दीदी का ये तो ये था ना स्लोगन, झुक झुक मर मर सिक सिक, सहन करना सीखना होगा। महान आत्मा ही सहन कर सकती है और जो सहन करती है वही महान आत्मा बनती है ना। तो आज से ये दृढ़ संकल्प करें, कोई भी ऐसे बातें आती हैं तो सहन जरूर करें, ताकि ये कुछ भी नहीं, बाबा के खातिर हम सहन जरूर करें, सेवा के खातिर हम सहन जरूर करें, यज्ञ के खातिर हम सहन जरूर करें। ठीक है, ओम शांति। हम अभी 10-15 मिनट, हमारे पास अभी 15 मिनट है, क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, माइक दे देना। अगर इस टॉपिक के कनेक्शन में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, माइक यहाँ रखेंगे तो जिनको भी पूछना है तो यहाँ आकर के पूछ सकते हैं।
ओम शांति। दीदी मेरा ऐसा क्वेश्चन है, बहुत दुविधा होती है मुझे कि हमारा विद्यालय का जो नियम है, जो धारणा युक्त है वही ब्रह्मा भोजन बना सकते, जिनकी धारणा नहीं है वो भोजन में नहीं, हम दूसरी सेवा कर सकते हैं। हम उनको मना तो नहीं करते सेंटर में आने की, लेकिन धारणा नहीं है। मधुबन होके आए फिर धारणा छोड़ी है और खुद भी वो कबूल करते हैं।
शॉर्ट में क्वेश्चन।
हाँ, लेकिन वो जानबूझ के कंपल उसी सेवा करना चाहते हैं और यज्ञ में बहुत अकांड तांडव इन्हें विघ्न बहुत झमेला निर्माण करते हैं। ऐसे समय हम बहने क्या करें, उनको वही सेवा चाहिए।
यहाँ समझने की जरूरत है कहाँ हमें फ्लेक्सिबल रहना है, कहाँ हमें दृढ़ रहना है। नियमों में, मर्यादाओं में, श्रीमत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब यज्ञ शुरू हुआ तब बहुत लोगों ने बोला पवित्रता का जो ये एक बात है ना, ब्रह्मचर्य का आप ड्रॉप कर दो, इसको निकाल दो, तो फिर आपका यज्ञ, आपका जो आपकी जो संस्था है बहुत आगे बढ़ेगी। श्रीमत मर्यादाओं में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की क्या श्रीमत है ना ये, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है ना। तो ऐसे ही ये नियम है जो धारणा वाले आत्माएं हैं, जो नियम सब कुछ फॉलो करते हैं, वही भोजन बना सकते हैं। ये कोई स्टेटस की बात नहीं है। हाँ, मैंने भोजन बनाया एक बहुत बड़ी सेवा है, नहीं, स्टेटस की बात नहीं है, धारणा पहली बात है। तो इसीलिए ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई सहन करने की बात नहीं है। क्योंकि केवल एक व्यक्ति के लिए भोजन नहीं बना रहे ना, अनेकों के लिए भोजन बना रहे हैं, तो अनेकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म बोझ है आत्मा के ऊपर, बहुत बोझ है। तो इसीलिए नहीं, ये केवल बोझ नहीं है, पाप है। तो इसको इसको समझने की जरूरत है।
ओम शांति जी। मेरे पिताजी, मतलब मेरे लौकिक पिताजी हैं, तो जैसे आज का टॉपिक था सहनशीलता,
थोड़ा सा मास्क नीचे करें,
आज का टॉपिक था सहनशीलता। तो जब से मैंने ज्ञान उठाया, मुझे 1.5-2 साल हो चुके हैं, तो लॉकडाउन में ही मैंने ज्ञान लिया। स्टार्टिंग में लास्ट ईयर की जब मैंने ज्ञान लिया, मुझे निमित्त आत्मा जो मिली, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे आप करते चलिए। मैंने कुछ बिना कुछ सोचे समझे ज्ञान को उठाया और मैं ज्ञान में चलती चली गई। जब ज्ञान उठाया तो मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना बाबा के बारे में पता था। लेकिन हाँ, जब जो है कि ऐसे विजुअलाइजेशन करते हैं, ज्ञान में बैठते हैं, और वो चीज ऐसे अनुभव हुआ मुझे कि कोई शक्ति है करके, और एक शांति मिली।
क्वेश्चन क्या है आपका?
क्वेश्चन ये है कि मेरे पिताजी जो हैं, अब इस ज्ञान के रास्ते पे आने के बाद बहुत कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, और जब से ज्ञान उठाया तो 9 बार 10 बार उस चीज को सहन तो कर लेते हैं, लेकिन अभी भी वो पीठ पीछे समाज में भी बहुत सारी जगह जाके मेरे लिए ही गलत बोलते हैं। छोटी बहन भी मेरे साथ ज्ञान में आ गई है, वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बोलते हैं करके, तो मैं उसे ये कहती हूँ कि छोड़ दे बाबा के ऊपर। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा,
थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं।
हाँ, कि बाबा से बात करके कि बाबा ऐसा हो रहा है करके, और फिर भी वो आत्मा शांत नहीं हो रही। वाइब्रेशन देना या उनके लिए अच्छा ही सोचना, एक बार मेरे दिल में भी आता है कि जब बाबा के लिए कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा मुझे अंदर से थोड़ा सा गुस्सा आता है।
ओके, समझ गई। इसको ना सहज क्या है, इग्नोर, उसको सुनो ही नहीं आप, इग्नोर करना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर वो आपके पिताजी जाकर के आपके परिवार में या फिर समाज में कुछ गलत ऐसे बातें फैला रहे हैं, उन बातों को सुना अनसुना कर दीजिए। इम्यून हो जाना, जैसे निर्लेप कहते हैं ना, आत्मा निर्लेप हो जाता, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इन बातों के लिए निर्लेप हो जाना है, सुना अनसुना करना है। जब अगर सुनेंगे फिर उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसके बारे में व्यर्थ चिंतन चलेगा, फिर आपके पिताजी के प्रति बुरा लगेगा, फिर नेगेटिव फीलिंग आएगी, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएगा, तो ये सब बातें हैं। तो इसीलिए ईजीएस्ट ये है इग्नोर, क्योंकि इग्नोर नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति बहुत डगमगाएगी। और ये दृढ़ निश्चय रहे कि भगवान आया हुआ है, ये अगर कोई भी बोल भी रहे हैं तो हमेशा ये सोचना, हाथी जब चलता है ना, कुत्ते तो भौंकेंगे, राइट? तो हाथी बनना है, महारथी बनना है। अगर आपको विश्वास है, आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, है ना, आप अपने पिताजी को समझा सकते हैं ना, कोई गलत काम तो कर नहीं। आजकल के बच्चे तो कितना गलत काम करते हैं, है ना, ड्रग्स ले लेते हैं, ये गलत संघ में चले जाते हैं, लेकिन आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा संस्कार अच्छा ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं समझे, इग्नोर। क्योंकि आपको निश्चय विश्वास है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, संस्कारों को श्रेष्ठ बना रहे हैं और समाज के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, हर एक के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। कोई बोलेंगे तो खुद पर विश्वास, ठीक है, बाबा में विश्वास।
ओम शांति। दीदी, कई भाई बहनें जो है वो ऐसी चर्चा करते हैं कि बहन जी ऐसा कुछ नहीं, नियम पियम हमने देखा है, कई लोग ऐसे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, कोई ऐसे प्रेगनेंस हो वो भी आते हैं बाबा मिलन, और आपने ही नियम ऐसे कई उनके संकल्प उल्टा सुल्टा आपस में फिर बातचीत भी करते हैं, तो उसके लिए आप समझाए। हम स्ट्रिक्ट रहते हैं इसमें तो हम बुरे लगते हैं।
देखो बहनों की परेशानी क्या क्या होता है, अभी समझ रहे हैं, समर्पित बहन बनना, छोटे परिवार में आप चार लोगों को संभालना इतना मुश्किल होता है, एक सेंटर संभालना, अलग अलग संस्कार, अलग अलग परिवार, इनको साथ लेके जाना इतना सहज बात नहीं है। फिर भी बहनों के प्रति बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, लेकिन जब बोलते हैं ना, थोड़ा सोच समझ करके किन के लिए बोल रहे हो आप, बाबा के बच्चों को अगर बोल रहे हैं, के बारे में बोल रहे हैं, कितना बोझ चढ़ता है ना, तो कभी नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, बहन के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जाकर के स्ट्रेटली बोल दो ना उनको, उनके अगर किसी के ना केवल सेंटर की बात है, किसी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इस व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है, इसके बारे में जाकर के 10 लोगों को बोल रही हूँ, ये तो गलत है ना, इसके साथ प्रॉब्लम है तो मैं उसके पास जाकर के बोलूँ ना कि ये प्रॉब्लम है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये बातें हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। हाँ, अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग जोन, अलग अलग रीति से चलता है। कोई कुछ टीचर्स लीनियंट है, कुछ लोग स्ट्रिक्ट है। आपको लीनियंट टीचर चाहिए, स्ट्रिक्ट टीचर चाहिए, किस में भलाई है? स्ट्रिक्ट चलने में भलाई है ना, आपकी भलाई। और जो बाबा ने जो नियम बनाए हैं, श्रीमत तो अलग बात है, लेकिन संस्था चलाने के लिए भी जो नियम बनाए हुए हैं, तो उन नियमों पर चलना भी किसकी भलाई के लिए? खुद की भलाई ना। जितना नियम मर्यादाओं पर चलेंगे उतना खुद की भलाई है ना, ये सोच करके चले, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन ले लेंगे फिर बात, लास्ट एक क्वेश्चन। क्या बात है, सभी बहन ही आ रहे हैं, भाई कुछ
क्वेश्चन लिख के दिए हैं।
अच्छा ठीक।
जब हम सहन करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मैं राइट हूं और उनका संस्कार बदलता ही नहीं, ये एक प्रश्न है। और आपने दादी का उदाहरण दिया ना, दादी ने सीट दिया उस कन्या को, तो प्रश्न है कि जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो उनको लगता है कि इनका ये काम ही है, इनका कर्तव्य ही है ना हमें सीट देना।
ठीक है ना, कोई बस मतलब कई बार ऐसा भी होता है हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनको वैल्यू ही नहीं है उनका उसका, है ना, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा करते जाना है। इसीलिए कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई आपको प्रेस करे या ना करे, लेकिन अच्छा करते जाना है। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं ना, सेवा समझ करके कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का भी एक गलती है ना, कभी भी दूसरों को बहुत स्पेशली समर्पित भाई बहनों के प्रति बहुत साधारण दृष्टि ना रखे, है ना, उन्होंने अपना जीवन दिया है। शादी करके दूसरे घर में जाते हैं तो कितने तकलीफ, बहनों को पता है, हाँ भाइयों को इतना पता नहीं होता है, हाँ शादी करके अपने घर छोड़कर दूसरे घर में जाना उनको पता नहीं है क्या है, लेकिन बहनों को पता होता है, माताओं को पता होता है। तो इसलिए हमेशा समर्पित भाई बहनों के प्रति वो साधारण बोल भी ना हो, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भगवान को दिया है, बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं वो, है ना, वो साधारण भले दिखते हैं लेकिन साधारण नहीं है।
जैसे ब्रह्म कुमारीज में आते हैं तो काफी लोगों का एक्सपीरियंस आता है कि डिफिकल्टीज चालू हो जाती है लाइफ में।
अच्छा, ओके।
सो अभी जो आपने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि वो भी जब इसमें मतलब अवतरण हुआ परमात्मा का, तो उन्हें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। सो ये डिटरेंट होता है नए, जो नई आत्माएं जब इसमें आती हैं, काफी लोगों के हम कोर्स कराते हैं तो बाद में बोलते हैं ये ब्रह्म कुमारीज में नहीं जाते तो इतनी सारी डिफिकल्टीज नहीं आती, ये तो बहुत आ गई। और मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है दैट आई हैड टू गो थ्रू टू मेनी थिंग्स, बट निश्चय था इसलिए, बट हरेक को निश्चय कैसे हम ला सके।
प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार का है, एक है संस्कारों के कारण से प्रॉब्लम आना, दूसरा है समाज, क्योंकि हम दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारे नियम मर्यादाएं हैं, तो उसके कारण से लोग संतुष्ट मतलब नाराज होते हैं, तो उसके कारण से दो प्रकार के हैं, है ना, दूसरों के कारण से है और खुद के कारण से है। तो फिर भी हमें जब लक्ष्य ऊंचा है, जैसे आपने देखा होगा मैं लास्ट ईयर नहीं कुछ साल पहले जब इंटरव्यू में ना न्यूज़ इसमें न्यूज़ देखती रहती हूँ पढ़ती रहती हूँ, पीवी सिंधु का इंटरव्यू था जो उन्होंने विंबलडन ये कुछ जीत करके आए थे, ओपन यूएस ओपन जीत के आए थे या कुछ ऐसा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा मोबाइल लिया गया था, मुझे आइसक्रीम खाना बंद था, तो सब कुछ त्याग करना पड़ा तभी जाकर के वो नंबर वन बनी ना। तो बाबा यहां ये समझने की जरूरत, डिसिप्लिन के बिना हम ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा ने जो डिसिप्लिन अभी यहां दिया है उसका कारण है, तो हमको सब बहुत कुछ त्याग करने की जरूरत है, त्याग के बिना भाग्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब समर्पित हो जाते सेंटर पे रहते तो वो अलग बात है, लेकिन प्रवृत्ति में रह करके ये सब कुछ करना थोड़ा चैलेंजिंग है ना, लेकिन लक्ष्य अगर ऊंचा है तो उनको भी कन्विंस कर सकते हैं, जब ये प्रॉब्लम्स आता है तो सामना भी कर सकते हैं। निरंतर लक्ष्य के तरफ हमारा नजर रहे, हमारा अटेंशन रहे, तो जरूर ये कर सकते हैं।
एक माता का सवाल है कि कोरोना में उसका बच्चा उसके बच्चे ने शरीर छोड़ा है, उसकी बार बार याद आती है, रोना आता है, क्या अभ्यास करूं पूछती, कोरोना में क्या अभ्यास करूं,
बच्चे का
शरीर छूटा है कोरोना में,
ओके
हाँ, तो अभ्यास क्या करूं।
ड्रामा पर निश्चय है ना, ड्रामा पर निश्चय है तो कभी ना जैसे कभी मिलते हैं, बिछड़ना एक दिन तो बिछड़ना होगा, लेकिन जल्दी बिछड़ना हो गया इस बार ना, तो ये होता है, माँ और बच्चे का जो संबंध है वो बहुत गहरा होता है, तो माँ को तो फीलिंग आएगा ही, लेकिन उस आत्मा को आत्मिक दृष्टि आत्मिक स्थिति से उस आत्मा को सकाश देना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो जर्नी है उस आत्मा की बहुत सुखद रहे, क्योंकि अगर आप दुखी हैं वो उस आत्मा को आप खींचेंगे, उस आत्मा को खींचेंगे तो वो आगे के जो जिंदगी है उस वो नहीं, नेक्स्ट बर्थ अगले जन्म में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए शक्ति, बाबा से शक्ति लेने की जरूरत है। बाबा से शक्ति लेकर के उस आत्मा को सुख और शांति के वाइब्रेशंस देते चले। तो अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं।